मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 3 नवंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक नए अंदाज में आपके सामने अपनी बात पेश करने जा रहा हूं और बात यह है कि अभी अशोक भाटिया जी ने मेरे पास एक पुस्तक भेजी है जिसका नाम है लघु कथा आकार और प्रकार। खैर ये तो पुस्तक का नाम है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक भाटिया जी ने इस किताब में बहुत सारी लघु कथाओं का संकलन किया है। डेफिनेटली उन्हें जो थोड़ी सी बेहतर लघु कथाएं मिली होंगी, जिन्हें आप शॉर्ट स्टोरीज कह लीजिए, बहुत ही छोटी कहानियां होती हैं, जो भी उन्हें बेहतर लगी होंगी उनका उन्होंने इसमें संकलन किया है। और मेरे लिए ये विशेष रूप से खुशी की बात है कि इसमें उन्होंने मेरी एक लघु कथा को भी शामिल किया है। मेरी एक पुस्तक आई है 101 लघु कथाएं, ये उसका नाम है 101 लघु कथाएं, जिसमें 101 लघु कथाएं मैंने लिखी हैं, उसमें से उन्होंने एक मेरी लघु कथा इसमें रखी है। यह मेरे लिए सचमुच बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं अशोक भाटिया जी के प्रति बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स मैंने सोचा कि क्यों न मैं आज अपनी वह लघु कथा अपने प्रिय श्रोताओं के सामने रखूं। तो मैं आज अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहने जा रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि मैं जो अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं वह इस लघु कथा के माध्यम से ही रख रहा हूं, राइट। तो मैं इस लघु कथा का वाचन आज आप लोगों से के सामने कर रहा हूं। इस लघु कथा का शीर्षक है पराजय, इसका शीर्षक है। अब इस लघु कथा को आप केवल सुने और अपने अपने ढंग से फिर इसके अर्थ इसके मायने निकालें। वे बहुत परेशान थे, उनके मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त होने को था। पिछले कई वर्षों से उन्होंने जी जान से मंत्री जी की सेवा की थी। मंत्री जी चाहते थे कि उसका भला करके उसकी सेवा से उऋण हो जाए। यहां जो उसकी है वो मंत्री जी के साथ काम करने वाले व्यक्ति से उसका अर्थ है। मंत्री जी चाहते थे कि वे उसका भला करके उसकी सेवा से उऋण हो जाए। मंत्री जी के पास अन्य भी बहुत से लोग थे, सेवा उन लोगों ने भी की थी, लेकिन इन सब ने सेवा के बदले भरपूर मेवा भी प्राप्त किया था, सीधे मंत्री जी से कह के, नहीं तो उनसे बिना पूछे उनके नाम का इस्तेमाल करके। लेकिन एक माधव राम ही ऐसा था कि हमेशा गर्दन नीचे किए हुए अपने काम में लगा रहता। मजाल है कि एक भी काम में जरा सी ढिलाई हो जाए। उनके काम से मंत्री बहुत प्रभावित थे। मंत्री जी बीच बीच में उसे टटोलते भी रहते, माधवराम कैसे हो? ठीक हूं सर। घर में बाल बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है सर। किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। कभी कोई जरूरत हो तो बताना। यस सर। लेकिन आज तक उसने कुछ भी नहीं बताया। ऐसा नहीं था कि माधवराम इतना समर्थ व्यक्ति था कि उसे किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं होती थी। मंत्री जी को मालूम है कि ऐसे कई अवसर आए, मसलन माधवराम के बेटे का स्कूल में दाखिला होने का अवसर, उसके इकलौते बेटे का अस्पताल में जाकर इलाज कराने का अवसर आदि आदि, किंतु माधवराम ने कभी अपने हाथ नहीं फैलाए। मंत्री जी को उसकी ये समस्याएं अपने दूसरे मातहतों के जरिए मालूम होती रहती थी। वे स्वयं भी पता करते रहते थे, लेकिन उन्होंने भी यह हट ठान लिया था कि जब तक माधव खुद नहीं कहेगा तब तक वे उसकी मदद नहीं करेंगे। मंत्री जी को कभी कभी तो यह लगने लगता कि यह माधव राम का अहम है, अन्यथा ऐसा क्या हो गया कि 10 साल में उसे एक बार भी मेरी जरूरत नहीं हुई। सच तो यह है कि माधव राम के साथ ही दबी जुबान से उसे मूडी भी कहते थे, जबकि वे जानते थे कि वैसा है नहीं। वह तो एकदम सीधा साधा गऊ आदमी था, अपने काम से काम। आज सूर्य प्रताप सिंह जी के कार्यकाल का अंतिम दिन था, मतलब यह कि आज ही वह अंतिम दिन था जब वे माधव राम के लिए कुछ कर सकते थे। अपनी इस परेशानी को रात में वे अपनी पत्नी तक से बता चुके थे, जबकि सामान्य तौर पर वे परेशानियों की चर्चा किसी से भी करते नहीं थे। आज कार्यकाल के आखिरी दिन माधवराम उनके लिए एक समस्या बन गया था। शाम के 4 बज गए थे। माधवराम अब तक मंत्री जी के पास नहीं आया था। मंत्री जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंततः उन्होंने ही माधवराम को बुलवाया। माधवराम, तुम कैसे हो? ठीक हूं सर। घर में बाल बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है सर। मंत्री जी थोड़ा रुके। उन्हें लगा कि यह प्रश्न उत्तर संवाद तो पहले की ही भांति चल रहा है, ऐसे में इच्छित परिणाम तक भला कैसे पहुंचा जा सकेगा। अतः उन्होंने संवाद का स्वरूप थोड़ा बदला। तुम्हें मालूम है कि आज मेरे कार्यकाल का आखिरी दिन है?
मालूम है सर।
माधव, देखो, आज तक तुमने अपने लिए मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने लिए कुछ करने को कहो।
यस सर।
इसके बाद खामोशी छा गई। माधवराम गर्दन झुकाए पूर्ववत खड़ा रहा। यह चुप्पी सूर्य प्रताप सिंह के लिए असह्य हो उठी। वे गरज पड़े, माधवराम, तुमने मेरा जितना बड़ा अपमान किया है उतना और किसी ने भी नहीं किया। सूर्य प्रताप सिंह गुस्से में कांप रहे थे। उन्होंने पहली बार माधवराम की आंखों को डबडबाया हुआ देखा। उसके आंसू की बूंदे कालीन पर टपकी। उसने रुंधे गले से कहा, गलती के लिए माफी चाहूंगा सर। माधवराम जा चुका था। सूर्य अस्त होने को था। सूर्य प्रताप का मन व्याकुल था। वे अपनी कुर्सी से उठे और आंसू की बूंदों से गीले हो गए गलीचे के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वे जल्दी से झुके और गीले कालीन पर अपने हाथ की उंगलियां छुआकर जल्दी से माथे पर लगा ली। आज सूर्य प्रताप सिंह ने अपने जीवन में पहली बार किसी के सामने पराजय और असहायता का अनुभव किया था। दोस्तों, यह एक छोटी सी कथा है जिसे लघु कथा के नाम से हिंदी जगत में जाना जाता है। इसका शीर्षक मैंने रखा है पराजय, जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया है। अब आप देखिए कि आप इसमें से क्या अर्थ निकालते हैं, कौन से मर्म को पकड़ पाते हैं, आपको यह लघु कथा कैसी लगी। यदि आप मुझे बता सकेंगे तो एक लेखक के नाते मुझे खुद की समीक्षा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।